श्री साई राम शाही वटना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
परात्परं परमात्मकलिंगं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्
कहते हैं चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा जाता है। लेकिन जो माघ के महीने की शिवरात्रि होती है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। कारण आप शायद जानते तो हैं ही कि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी एक एक कला को खो देता है, अखिली कला पे होता है। यूं मानिए कि बिल्कुल अमावस की ओर जा रहा है, आपको नजर नहीं आएगा, अंधकार छा जाएगा। कहा जाता है कोई कारणवश कहा जाता है या ज्योतिषी गणना के अनुसार माघ के महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जिसे महाशिवरात्रि कहते हैं वो एक ऐसा दिन है जिस दिन आप भगवान शंकर की आराधना करें। भगवान शंकर की क्यों भाई? शंकर का अर्थ है, शिवा का अर्थ है कल्याणकारी। जो आपका कल्याण करें। और चंद्रमा से हमारा क्या ताल्लुक है? चंद्रमा मन का प्रतीक है, अपनी कलाओं को खो रहा है। कहा जाता है महाशिवरात्रि की रात अगर आप अपना ध्यान परमात्मा पर केंद्रित करें तो आप अपने मन को मार सकते हैं, मन से बाहर निकल सकते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं भाई पूरी रात बैठ के भजन कीर्तन करना तो हमारे बस की बात नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। विचार कीजिएगा, अगर आपको पूरी रात कभी सिनेमा देखनी हो, रात रात को उठ के रग्बी का मैच देखना हो, सॉकर का मैच देखना हो, क्रिकेट का मैच देखना हो, कोई शो वगैरह हो रहा हो, तब तो हमारी आंखें झपकती भी नहीं है। सोने की बात तो दूर झपकती भी नहीं है। और जब परमात्मा का नाम लेना हो तो एक रात भारी पड़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, शिवा को कहा गया मुक्तिदाता, जो आपको मोक्ष प्रदान करे। ज्यादातर लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जो है संसार की उत्पत्ति करते हैं, भगवान विष्णु उसका पालन करते हैं और शिवाजी उसका स्वर्नाश कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ऐसा नहीं है, शिवाजी समाप्त नहीं करते हैं, आपको मोक्ष देते हैं। मोक्ष का अर्थ है जिस दिन आपका मन समाप्त हो जाए उसे मोक्ष कहा गया। जरा ध्यान दीजिएगा, शिवरात्रि की रात जब चंद्रमा अपनी कलाओं को पूरी प्रकार से खोने वाला है, वो कहते हैं कि ये चंद्रमा हमारी सहायता कर रहा है उस वक्त कि हम अपने मन को भूल जाएं। मन क्या है? बंडल ऑफ डिजायर्स, केवल इच्छा ही तो है, और है क्या? कभी कोई ऐसा समय आया जब इच्छाओं से विरक्त हो गए हों? याद रहे और ध्यान रहे, रात को मन ज्यादा चंचल होता है, दुनिया भर के विचार रात को आते हैं दिमाग में आपके। मन को मारना ही, मारने का अर्थ है डिस्ट्रॉय करना, मारने का अर्थ है मन पर नियंत्रण पाना, मारने का अर्थ है मन को कंट्रोल करना, उसी को कहा गया है मोक्ष। जब मन को मार लेंगे आप, तब आपको ये समझ में आएगा कि आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, आप आत्मा है। जिस दिन आपने अपने आप को आत्मा अनुभव कर लिया, आपका मोक्ष प्राप्त हो गया। भगवान शंकर को लेके हजारों कहानियां बनाई गई हैं, या हजारों कहानियां हैं, उन सभी कथाओं की व्याख्या हम यहां पर नहीं कर सकते। लेकिन पल भर के लिए भगवान शंकर के स्वरूप पे ध्यान दीजिए। भगवान शंकर बैठे हुए हैं, जटाओं से गंगा बह रही है, ललाट पे चंद्रमा है, तीसरा नेत्र खुला हुआ है, गले में सांप की माला है, शरीर पर राख मले हुए हैं, एक तरफ त्रिशूल है, उसमें डमरू लटका हुआ है, साथ में कटोरा पड़ा हुआ है। ये जो भगवान शंकर है, हमारे को कोई तो संदेश दे रहे होंगे ना, कोई तो मैसेज दे रहे होंगे हमारे को। कहा जाता है जटाएं, तो जो गंगा बह रही है उसका अर्थ है लाइफ फोर्स, प्राण शक्ति। गंगा का अर्थ है प्राण शक्ति, प्राण शक्ति हमारे ऊपर से प्रवाहित हो रही है। विचार कीजिएगा, कभी आपने सोचा कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप चुपचाप अगर चौकड़ी मार के बैठ जाएं, पद्म आसन में बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के और अपने ध्यान को केंद्रित करें तीसरे नेत्र की ओर, और आप अपने मन से अपने मित्रों पर प्रेम की बरसात करें, वो सारी शक्ति सारी ऊर्जा आपको सर से निकलेगी। भगवान शंकर ने माथे पे लगाया है, उनके उनके ललाट पर है चंद्रमा। चंद्रमा वैसे तो हम कहते हैं मन का प्रतीक है, लेकिन चमकता हुआ चंद्रमा, बढ़ता हुआ चंद्रमा, मन को शीतलता देता हुआ चंद्रमा, चेतना का प्रतीक चंद्रमा। लेकिन कहीं पर यह भी कहा गया कि अगर आपको किसी के भीतर कोई अच्छाइयां नजर आए, उसको आप अपने ललाट पे धारण कर लें। किसी के अंदर रति भर कोई अच्छाई नजर आए तो लोगों को बताएं, ललाट पे धारण कर लें। भगवान शंकर के गले में सर्प है कि उन्होंने एक बार हलाल विष को अपने कंठ में रख लिया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया, नाम पड़ गया नीलकंठ। वहां पर सांप है। अगर आपको किसी के भीतर कोई बुराई नजर आती है, भगवान शंकर की तरह उसको अपने कंठ में दबा के रख दें, आगे बोले नहीं। लेकिन ज्यादातर उल्टा होता है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, कि हम औरों की बुराइयों को चारों तरफ फैलाते हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयों के बारे में बात नहीं करते हैं। यहां उल्टा कहा जा रहे हैं, अगर किसी के अंदर को अच्छाई हो तो उसको धारण कर लें, बुराई हो तो अपने गले में रख लें, बाहर ना निकालें। तीन नेत्र हैं, तीसरा नेत्र, वैसे तो कहा जाता है कि तीन नेत्र तीन लोगों के लिए हैं, लेकिन तीसरा नेत्र ज्यादातर लोग कहते हैं भगवान शंकर जब तीसरा नेत्र खोलते हैं चारों तरफ त्राही त्राही मच जाती है, ये सोचना गलत है। तीसरे नेत्र का तात्पर्य केवल इतना है कि आप तीसरे नेत्र के द्वारा अपने भीतर की यात्रा आरंभ कर सकते हैं। जब आप दोनों आंखों के बीच में माथे के मध्य में अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, धीरे धीरे आंखों को बंद करेंगे, तो आपका ध्यान तीसरी आंख पर जाएगा, जो आंख अंतर को देखने के लिए है। आपके अंदर क्या हो रहा है, अंतर में क्या हो रहा है, अंतर की यात्रा कब आरंभ होगी भाई? उन्होंने त्रिशूल रखा है, त्रिशूल, तीन शूल है, डमरू बंधा हुआ है। कहते हैं तीन शूल जो है, देह आत्मा जीव आत्मा और परमात्मा के कारक हैं। देहात्मा बॉडी कॉन्शियसनेस, जीवात्मा माइंड कॉन्शियसनेस, परमात्मा आत्मिक कॉन्शियसनेस। वो ये कह रहे हैं भाई, आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप आत्मा हो। ये आपकी यात्रा आपके सामने रख रहे हैं। हम अपना पूरा जीवन इसी में गुजार देते हैं कि हम शरीर है या मन है। वो यहां से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। विचार कीजिएगा, भगवान शंकर के पास कटोरा पड़ा हुआ है, डमरू बंधा हुआ है। डमरू का अर्थ है हार्ट बीट, शरीर की धड़कन। हर धड़कन के साथ आपके मुख पर परमात्मा का नाम आना चाहिए। पहले चलते हैं कटोरे पर। कटोरा ऐसे पड़ा है जैसे कोई भीख मंगा हो। भगवान शंकर कुबेर के मित्र हैं। भगवान शंकर के लिए क्या संभव नहीं है। लेकिन कटोरे का अर्थ है दान पुण्य करना मत छोड़िएगा, लोगों के कटोरों को भरो आप, अर्थात लोगों के साथ आप दया का बर्ताव करो, कंपैशन का बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, करुणा का बर्ताव करो। शरीर पर राख को मला हुआ है। कभी आप सोचा आपने कि राख जो है कैसे बनती है? जब आप कोई चीज को जला देते हैं राख हो जाती है। राख को आप दोबारा नहीं जला सकते, राख राख ही रहेगी। और राख को आप एक वर्ष नहीं हजार साल रख लें तब भी राख रहेगी, उससे आगे कोई परिवर्तन नहीं है। कहते हैं भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था, ये वो राख है। क्या मतलब? किसको भस्म किया? कामदेव को। क्या आपके भीतर काम की वासना है? उसको भस्म कीजिए। क्या आपके अंदर कोई बुरी आदत है? उसको भस्म कीजिए। कि आपके अंदर रति भर भी कोई बुराई है उसको भस्म कीजिए। एक बार भस्म हो जाए तो वापस नहीं आएगी। एक बार जल जाए, राख बन जाए, वापस नहीं आएगी। अपनी आदत को ऐसे जलाएं कि राख बन जाए, वापस ना आए। अपनी काम वासना को ऐसे जलाएं कि राख बन जाए, लौट के ना आए। शरीर पे मल लिया, ही हैज कॉन्क्वर्ड द डिजायर। उन्होंने इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, इच्छाओं पर काबू पा लिया। सोचना पड़ेगा आपको। एक बात और, भगवान शंकर को ज्यादातर अकेले दिखाया जाता है। कहते हैं शमशान घाट में रहते हैं, कोई कहता है हिमालय पर रहते हैं, कोई कहता है कैलाश पर रहते हैं। कोई ऐसी जगह है जहां पर वो नहीं रहते, वो सोचिए आप। सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं। शमशान घाट पे रहने का तात्पर्य, शरीर पे राख लगाने का तात्पर्य एक और भी आ जाता है। जब आपके मृत्यु हो कि घर वाले आपके शरीर को ले जाके शमशान घाट में जला देंगे, आपका शरीर राख बन जाएगा। उसके बाद नो फर्दर चेंज, कोई बदलाव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है उस राख में। ये भी तो कह सकते हैं भैया, मृत्यु को सदैव याद रखो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपकी मृत्यु निश्चित है, अवश्य आएगी। That is guaranteed, that is certain. तो किस बात का अभिमान, किस बात का घमंड? बताने के लिए कि death cannot be escaped, आप मृत्यु से नहीं बच सकते, लेकिन मृत्यु से बचने का अर्थ है मृत्यु को पाकर भी आप अमर हो सकते हैं, आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं कि दोबारा आपकी मृत्यु ना हो। विचार कीजिएगा। कहते हैं तो कभी मंदिरों में आपने देखा होगा भगवान शंकर के सामने नंदी बैठा होता है, नंदी उनका वाहन है। ये भी कह देते हैं शिवलिंग के आगे आप देखा होगा नंदी बैठा होता है। असल में तो शिवलिंग जो है वो सिंबल है, एक प्रतीक है भगवान शंकर का, और नंदी जो है जीव का प्रतीक है। नंदी ने अपने मुख को संसार से हटा के शिवलिंग की ओर किया, कहने का तात्पर्य है आप जीव हैं, अपने मन को संसार से हटा के शिव की ओर कर दें। और उसको करने के लिए शिवरात्रि तो अच्छा कोई अवसर नहीं है। आपने देखा होगा लोग मंदिर में जाते हैं नंदी के कानों के बीच में से शिवलिंग को देखते हैं। वाई क्यों? कहने का तात्पर्य है आपकी साधना ऐसी हो कि आपकी आंखें केवल ईश्वर के दर्शन करें, आपके कान केवल ईश्वर के बारे में सुने। ये नंदी हमें शिक्षा दे रहा है कि मैंने संसार से मुख को मोड़ के परमात्मा को कर दिया, मेरे कानों में केवल भगवान के भजन चल रहे हैं, मेरे कानों में भगवान की चर्चा चल रही है, मेरी आंखें केवल शिव दर्शन कर रही हैं। आपका विचार करना होगा। कभी आपने सोचा शिव परिवार में भगवान शंकर के गले में सांप है, साथ में माता पार्वती है शेर पे सवार है, गणेश जी हाथी के सून मूषक पे सवार है, सुब्रमण्यम जी गणेश जी के भाई जी मोर पे सवार है, सामने बैल नंदी बैठा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता गणेश जी जो हाथी वो शेर को खा जाए, शेर बैल को खा जाए, सामने नंदी जो बैठा हुआ है, मोर सांप को खा जाए, सांप चूहे को खा जाए। ये सारे प्राणी विपरीत नेचर के हैं, प्रवृत्ति के हैं। मोर सांप को खा जाता है, सांप चूहे को खा जाता है, शेर बैल खा जाता है, हाथी शेर को खा सकता है, मार सकता है। कहने का तात्पर्य है कितने ही विपरीत प्राणी आमने सामने आ जाएं, लेकिन जब आप भगवान शंकर के सामने होते हैं सबके अंदर प्रेम आ जाता है, सबके अंदर हार्मनी आ जाती है, सबके अंदर एकता आ जाती है। इस बात पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। इसलिए कहा गया भगवान शंकर के बिना हम शव हैं, उनके साथ हम शिव हैं। इसलिए कहा गया भगवान शंकर का अर्थ कल्याणकारी, और शिवरात्रि की रात जब चंद्रमा अपनी सारी कलाएं खो रहा है आपको एक मौका दे रहा है कि आप संसार से हटके परमात्मा की ओर बढ़ जाएं। वही आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप, लेकिन आपको आरंभ करना होगा। भगवान शंकर को और भी कई नाम दिए गए हैं जिनकी चर्चा आज हम नहीं कर पाएंगे। खाली इतना ध्यान दिया जिस प्रकार से ओम एक स्वर का प्रतीक है, भगवान के स्वर का प्रतीक है ओम, उस प्रकार से लिंगम भगवान शंकर का प्रतीक है। और हम कहे जाते हैं रुद्र अभिषेक कर रहे हैं, रुद्र 11 प्रकार के रुद्र बताए गए हैं, लेकिन उन रुद्रों को छोड़ के कहा गया अभी भौतिक आध्यात्मिक अधिदैविक, लेकिन इस समय हम जो बात कर रहे हैं रुद्र जो है हमारे बुद्धि से जुड़े हुए हैं। अभी भौतिक होते हैं फाइव एलिमेंट, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और फाइव शीत यानी कि पंचकोश, अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, अनंतमय कोश। ठीक है जी, ये सारी सफरिंग जो है, सारी जो बीमारियां हैं, जो सारी सारे दुख जो हैं, यहाँ से आते हैं। आध्यात्मिकता जो बात करती है, वत पित्त कफ के बारे में बात करती है आध्यात्मिकता। अधिदैविक जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, जिस प्रकार से बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, अर्थक्वेक आ गया, ये सारी कैलेमिटीज हमारे ऊपर आती हैं 11 रुद्र के कारण। लेकिन 11 रुद्र है क्या? हमारी पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां और एक मन, ये 11 रुद्र हैं। रुद्र अभिषेक का अर्थ है अपने भीतर आपके जो 11 रुद्र हैं, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, मन, इस पे नियंत्रण पा लेना, इसका अभिषेक करना कि ये सही रास्ते पे जाएं, ये नियंत्रण में रहें, कंट्रोल में रहें, उसे कहा रुद्र अभिषेक। और आप सोचिएगा जरा, विचार तो कर लीजिएगा, शिवरात्रि एक ऐसा समय है जब हम अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पूरी रात भूखे रहते हैं और ध्यान हमेशा खाने पे रहता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान आपका परमात्मा पे हो और इंद्रियां आपके काबू में हो, उसे कहा गया महाशिवरात्रि का पर्व, उसे कहा गया रुद्र अभिषेक। जय श्री साईं।
दृशत विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौतिकस्रजो गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुरुद्विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः सदा सदाशिवं भजाम्यहम्। सदानिलिम्प निर्जरी निकुञ्जकूटरे वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्तमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचनो ललाम भाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् सदा सुखी भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम् पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिनां तु शङ्करस्य चिन्तनम्। पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतम् यः शम्भुपूजनपरम् पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम् मृजगजेन्द्रतुरङ्गयुक्ताम् लक्ष्मीम् सदैव सुमुखीम् प्रददाति शम्भुः। इति श्रीरावणकृतम् शिवताण्डवस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।